धौला पुस्तक सात लेक्चर नंबर 13 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् जय उधरसेननाहो जैन महाकम्मपयडि पाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोद्धरियो समप्पियो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हमारा द्वितीय खंड चल रहा है, पहला तो जीवस्थान था, अब ये द्वितीय खंड है। इसका नाम है खुद्दाबंध और ये सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 96 पर हम आ गए। 56 पेज पर आपका प्रश्न है, एक मिनट 56 निकाल लो। हाँ एक मिनट है, जरा प्रश्न चल रहा है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? अभी सुनना ही दे रहा है क्या अभी? हाँ हाँ बोलो तेजल। 56 पेज पर विशेष विशेष मनुष्य के, हाँ तीर्थंकरों के नहीं होता, सामान्य केवली के हो सकता है।
हाँ
नहीं ना, तीर्थंकरों का तो सारा प्रशस्त होता है, पर सामान्य उनके समचतुर्थ संस्थान ही होता है। जैसे संस्थान में भी हमने 6 भंग देखे, तो वो सामान्य केवली की अपेक्षा है। सहनन तो सबको वज्रोषभ नाराज ही होता है,
पर
समचतुर्थ संस्थान यानी सब प्रशस्त ही प्रकृतियां उनके पाए जाते
हैं।
हाँ सामान्य में 6 संस्थान, 2 विहाय गति और 2 स्वर, ऐसा ऑप्शन है। हाँ उसके कारण वो भंग भी बनेंगे और उसके कारण वो प्रकृतियों भी अलग अलग गिनाई गई है, उसमें भंगों में डिफरेंस आता है उसमें। अभी हम आते हैं 96 पृष्ठ पर। यहाँ बंधकों की प्ररूपणा चल रही है, मार्गणाओं में अलग अलग घटित कर रहे हैं कि कौन से मार्गणा में जीव कैसे होता है, उसमें उस मार्गणा में कैसे पाया जाता है, इसकी चर्चा हो रही है। तो संयम मार्गणा की बात अपनी हो गई थी, अब दर्शन मार्गणा के अनुसार यहाँ बात चलेगी। यह प्रश्न पूछा गया है 96 पेज पर, 56 नंबर की गाथा है। दंशनानुवादेन चक्षु दंशनी अचक्षु दंशनी ओहि दंशनु नाम कदम भवदी, इन्हें कैसे होता है ना, वो कौन से भाव है उसमें, इच्छाएक है कि औपशमिक है कि औदयिक है कि पारिणामिक है, इस तरह से चर्चा चली थी। नीचे हिंदी में दर्शन मार्गानुसार जीव चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी व औधि दर्शनी किस कारण से होता है, यहाँ पर पहले के समान निक्षेप करना चाहिए, उसमें सब नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि निक्षेप लगाकर उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो इसमें से कौन से वाली बात यहाँ समझना है। अब शंकाकार ये पूछ रहा है दर्शन होता ही नहीं, हाँ और उसके लिए अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत कर रहा है, वो क्या क्या तर्क है उसको अभी हम पढ़ेंगे। शंकाकार पूछता है दर्शन नहीं है क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है, ऐसा उसका कहना है। बाह्य पदार्थों संबंधी सामान्य को ग्रहण करना दर्शन नहीं है क्योंकि वैसा मानने पर केवल दर्शन के अभाव का प्रसंग आता है, यानी सामान्य का सामान्य अवलोकन व दर्शन, ऐसे उसकी परिभाषा है। तो यहाँ कहते बाह्य पदार्थों का सामान्य अवलोकन दर्शन नहीं हो सकता, और ऐसा मानेंगे तो केवल दर्शन का अभाव हो जाता है। उसका कारण वो स्वयं प्रस्तुत कर रहा है। उसका कारण यह है कि जब केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल गोचर यानी अनादि अनंत सारे ही भूत भविष्य वर्तमान के अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप, ये अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय क्या है मालूम है? नहीं मालूम। प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं? तो अनंत है। तो प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय होती है, उसको कहेंगे अर्थ पर्याय। गुणों की प्रति समय होने वाली पर्याय को कहेंगे अर्थ पर्याय। और उनमें जो प्रदेशत्व गुण का जो पर्याय है उसकी, उसको कहेंगे व्यंजन पर्याय, या दूसरी अपेक्षा से लंबे काल तक चिरकाल यानी लंबे काल तक चलती है, जैसे मनुष्य पर्याय है, नारके है, सिद्ध पर्याय, ये इसको व्यंजन पर्याय कहने में आता है। परंतु उसकी परिभाषा है कि प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो ये द्रव्य तो अपने अर्थ और व्यंजन पर्याय रूप से पाया जाता है। यहाँ कहते हैं केवल ज्ञान ने क्या किया, त्रिकाल गोचर समस्त अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यों को, यानी समस्त द्रव्यों को कैसे जान लिया है, उसके सभी पर्यायों सहित जान लिया है। अनादि से अनंत काल तक के एक एक समय की पर्याय को उन्होंने जुदे जुदे जान लिया है। तो समस्त द्रव्यों को जान लेने पर केवल दर्शन के लिए कोई विषय ही नहीं रहता। यह इनका क्या कहना है, तर्क कि ज्ञान ने सब कुछ जान लिया, अब दर्शन के लिए कुछ बाकी नहीं रहा जानने को, ये इनका कहना है, इसलिए दर्शन होता ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। देखो आगे बढ़ते, और केवल ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को ही केवल दर्शन ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। ये कहते उसी जो पदार्थ को ये भी जान दर्शन भी ग्रहण कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ग्रहण किए गए पदार्थ के पुनः ग्रहण करने का कोई फल नहीं है। ऑलरेडी जो जान लिया है तो फिर उसमें दोबारा वो ग्रहण यानी जानने रूप अर्थ में, तो उसके दोबारा कैसे जाने, उसका फल कुछ नहीं है, ऑलरेडी उसने जान ही लिया है। और भी उसके अपनी दलील है शंका करके, समस्त विशेष मात्र को ग्रहण करने वाला ही केवल ज्ञान हो, यानी केवल ज्ञान मात्र विशेषों को ही ग्रहण करता है, जिससे कि समस्त पदार्थों का सामान्य धर्म केवल दर्शन का विषय हो जाए, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। उसने एक एक पदार्थ में सामान्य और विशेष को सेपरेट करके कहना चाहा कि जो सामान्य धर्म को दर्शन ग्रहण करता है और मात्र विशेष धर्म को ही ज्ञान ग्रहण करता है, ऐसा अगर कहेंगे, ये स्वयं ही दलील कर रहा है, जिसमें वो उसकी मूल में भूल कहाँ हो रही है। एक एक पदार्थ के सामान्य विशेष को अलग अलग नहीं कर रहा है। जब हम सामान्य अवलोकन कहते हैं तो भिन्न भिन्न पदार्थों में डिफ्रेंशिएट किए बिना उनको ग्रहण करना है, उसको सामान्य कहते हैं, उसके अस्तित्व मात्र का ग्रहण हो जाना। ये वस्तु में ही सामान्य विशेष भेद कर सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और विशेष को ऐसा ज्ञान ये कहकर ऐसा तर्क करके फिर ये प्रश्न खड़े कर रहा, ख्याल में ना उसके प्रश्न दलील क्यों कह रहे इसे। तो कहते ज्ञान उसके सामान्य सामान्य यानी विशेषों को जानेगा और उसके पदार्थों के सामान्य को दर्शन जानेगा, तो कहते ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए उसकी दलील शंकाकार की, ये सब शंकाकार की दलील है ये समझना, क्योंकि संसार अवस्था में जब आवरण के वश से ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति क्रमशः होती है, तब द्रव्य के ज्ञान होने के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि यह संसार अवस्था में दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, तो कहते ज्ञान का अभाव ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान द्रव्य का परिच्छेदक नहीं रहा, परिच्छेदक यानी जानने वाला नहीं रहा, कारण कि सामान्य से भिन्न विशेषों में उसका व्यापार होता है। यानी जब दर्शन सामान्य को ग्रहण कर रहा है तो ज्ञान कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको विशेषों में जान उसका व्यापार होता है, इसलिए उसका कार्य ही नहीं रहा, ऐसा मानना पड़ेगा। और दर्शन भी द्रव्य का परिच्छेदक नहीं है, दर्शन को भी द्रव्य का जानने वाला यानी ग्रहण करने वाला नहीं कहेंगे हम, क्योंकि उसका व्यापार भिन्न सामान्य में होता है। यानी वस्तुओं के सामान्य और विशेष भिन्न मानकर इसका ये सारे प्रश्नोत्तरी चल रही। यहाँ जो उसका व्यापार ये शब्द रिपीट आया है, उसको निकाल देना। मनीषा आपके उसमें कैसा वाक्य है, देखो क्योंकि के आगे पढ़ो। हाँ वो फिर दोबारा उसका व्यापार आया ना, उसको निकाल दो। उसका व्यापार भिन्न सामान्य में होता है, ये ठीक है। इस प्रकार न केवल संसार अवस्था में ही द्रव्य के ग्रहण का अभाव होता है, यानी वो सिद्ध क्या करना चाहते हैं, दर्शन को मानो ही होता ही नहीं, अगर उसको मानेंगे तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। ये उसके दलील है, अलग अलग पद्धति से कर रहा है। तो कहते संसार अवस्था में द्रव्य के ग्रहण का अभाव नहीं होता, परंतु केवली के भी द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा, यानी उनके भी ज्ञान का कार्य नहीं होगा, क्योंकि एकांत रूपी दुरंत पथ में स्थित सामान्य व विशेष में प्रवृत्त हुए केवल दर्शन और केवल ज्ञान का द्रव्य मात्र में व्यापार मानने में विरोध आता है। उसको क्या कहेंगे, एकांत से कोई सामान्य कोई ग्रहण कर रहा है, कोई विशेष कोई ग्रहण कर रहा है, तो कहते हैं ऐसा कि वो ठीक नहीं बैठता। और न एकांत से सामान्य और विशेष पृथक पृथक से होते हैं, और सामान्य और विशेष कोई अलग वस्तु तो नहीं होती है, द्रव्य का ही वो अंगभूत है, जिससे कि वे क्रमशः केवल दर्शन और केवल ज्ञान के विषय हो सके। यानी वो एक एक पदार्थ के सामान्य विशेष को डिफरेंट करके वो इसका सारे प्रश्न उसी के कारण उद्भवित हो रहे। और जो है ही नहीं उसको भी यदि प्रमेय रूप से मानना अभीष्ट हो, तो गधे का सिंह भी प्रमेय स्वीकार करना चाहिए। यानी इनको कहते जो है ही नहीं और उसका स्वीकार करते हैं, तो गधे के सिंह को भी स्वीकार करो जो है ही नहीं, क्योंकि अभाव की अपेक्षा दोनों में कोई विशेषता नहीं है। प्रमेय के न रहने पर प्रमेय भी नहीं रहता, जो कोई चीज ही नहीं जानने योग्य तो फिर प्रमाण यानी ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रमाण प्रमेय निमित्तक होता है। तो जानने में चीजें आई तभी तो उसको हम प्रमाण कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, ज्ञेय की अपेक्षा इसको ज्ञान कहने में आता है। इसलिए दर्शन ही नहीं है यह सिद्ध हुआ, ये लंबी चौड़ी शंकाएं दलीलें देकर दर्शन को है ही नहीं ऐसा सिद्ध करना चाहता है, ये उसके सारे तर्क है। अब यहाँ 98 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। पहले कहते दर्शन है क्योंकि सूत्र में 8 कर्मों का निर्देश किया गया है। 8 कर्म कौन से है? हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, फिर वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। तो दर्शनावरण का नाम आया कि नहीं आया? तो आवरण, दर्शनावरण ये शब्द आया, यानी वो कर्म है ऐसा सूत्र में बताया है। तो आवरण है तो दर्शन भी होना चाहिए ना, तो बिना दर्शन के आवरण किसका? अभी कहेंगे उसको। देखो दर्शन है क्योंकि सूत्र में 8 कर्मों का निर्देश किया गया है, और आवरणीय के अभाव में आवारक हो नहीं सकता। क्या कहते हैं, जिसको आवरण किया जाता है उसको कहेंगे आवरणीय, और आवारक यानी आवरण को कहेंगे आवारक, आवरण करने वाला। दर्शनावरण क्या हुआ? आवारक। और दर्शन जो है वो आवरणीय। ऐसे शब्द होते हैं ना, पूज्य और पूजक, जिसकी पूजा की जाए वो पूज्य और उसका पूजा करने वाला पूजक। तो जो आवरण करता है वो आवारक, तो आवारक कौन हुआ? दर्शनावरण। और आवरणीय कौन हुआ? वो दर्शन। फिर से पढ़ते, आवरणीय के अभाव में इन्हें दर्शन के अभाव में आवारक इन्हें दर्शनावरण हो नहीं सकता। और दर्शन आवरण है ऐसे सूत्र में बताया, आठ कर्म है तो केवल के वचन है, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। दर्शनावरण का निर्देश उपचार से किया गया है यह भी नहीं कह सकते। आप कहेंगे उसको उपचार से कह दिया है तो कि यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्य वस्तु के अभाव में उपचार की उपपत्ति नहीं बनती। मुख्य वस्तु ही नहीं होगी तो उपचार किसका काहे का। और आवरणीय नहीं है सो बात भी नहीं है, आवरणीय ने दर्शन नहीं है यह भी बात नहीं है, क्योंकि चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी और अवधि दर्शनी क्षावक्षमिक लब्धि से तथा केवल दर्शनी क्षायिक लब्धि से होते हैं। एक शाकिक हुआ है, क्षायिक करो इसमें क्या है, क्षायिक बराबर है। हाँ क्या कहते हैं ये सूत्र है ना, क्या सूत्र है अभी पूछा गया था ना, चक्षु दर्शन वगैरह क्यों होते हैं, तो आगे क्षायक्षमिक दर्शन से क्षायक्षमिक लब्धि से और केवल दर्शनी क्यों होते हैं तो क्षायिक लब्धि, ऐसा सूत्र है। इस प्रकार आवरणीय के अस्तित्व का, आवरणीय ने यहाँ दर्शन, दर्शन के अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाले जिन भगवान के वचन देखे जाते हैं, जिनेन्द्र भगवान के वचन, ये तो सूत्र है वो जिनेन्द्र के वचन है, मूल सूत्र है वो, तथा और भी समाधान में और भी आचार्य दलील दे रहे हैं। ऊपर गाथा जो है ना, एओ है ना, वो एगो करना, एगो में ससदो अप्पा नान लंथन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सवे संजोग लखना। ज्ञान और दर्शन रूप लक्षण वाला नान दंसन लखनो मेरा आत्मा ही एगो, वो कैसा है एक है और कैसा है शाश्वत है, कि ज्ञान और दर्शन रूप लक्षण वाला मेरा आत्मा ही एक और शाश्वत है, शेष समस्त संयोग रूप लक्षण वाले पदार्थ मुझसे बाह्य है, यानी आत्मा से वो अन्य है जुदे है। अब 17 नंबर कहते हैं, अशरीरा जीव घणा वजुत्ता दंसनेयनानेय सायारमणायारम लक्षणमेयम तु सिद्धानम। यानी वो ज्ञान और दर्शन लक्षण है ये सिद्ध कर रहे हैं, इसके लिए ये प्रूफ दे रहे हैं। जो अशरीर अर्थात काय रहित है, शुद्ध जीव प्रदेशों से घनीभूत है, जीव घना कहे ना, घन घन स्वरूप है, दर्शन और ज्ञान में अनाकार व साकार उपयोग से उपयुक्त है। यानी दर्शन वो अनाकार उपयोग है और ज्ञान है वो साकार उपयोग है, वे सिद्ध है, यह सिद्ध जीवों का लक्षण है। लक्षणमेयम तु सिद्धानम, यानी पहले में पहले तो आत्मा का ज्ञान लक्षण वाला आत्मा कह दिया है और यहाँ तो सिद्धों में भी वो बात बताई है। इस प्रकार अनेक उपसंहार सूत्रों के देखने से भी यही सिद्ध होता है कि दर्शन है, ये दर्शन नहीं है वाली जो शंकाकार की जो शंका है उसके अगेंस्ट इन्होंने दर्शन का अस्तित्व सिद्ध किया। शंकाकार पूछते हैं, आगम प्रमाण से दर्शन का अस्तित्व भले ही हो किंतु युक्ति से तो दर्शन का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, तर्क से वगैरह तो सिद्ध नहीं हो रहा है दर्शन का अस्तित्व। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि युक्तियों से आगम बाधित नहीं होता। शंकाकार कहते हैं, क्योंकि आगम से तो जात्य अर्थात उत्तम युक्ति साधी बाधी नहीं जाती। इन फिर प्रश्न पूछ रहे के आगम से उत्तम युक्ति जाते, उसका अर्थ ही होता है उत्तम युक्ति, जाते ने उत्तम जच्छा युक्ति यानी उत्तम युक्ति, जात्य का अर्थ उत्तम, तो उत्तम युक्ति बाधी नहीं जाती, यानी जिसको कहें ना सही तर्क है वो तो आगम से, वो तो तर्क से भी वो सिद्ध हो जाती है बात, परंतु ये तो खोटे तर्क लगा रहे हैं ना, इसलिए शंकाकार स्वयं कहते हैं आगम से उत्तम युक्ति बाधी नहीं जाती, उसका समाधान। यह बात सत्य है कि आगम से उत्तम युक्ति नहीं बाधी जाती, किंतु यह युक्ति बाधी जाती है। यानी ये जो सामने प्रस्तुत कर रहा है कुतर्क जिसको कहेंगे, क्योंकि उसमें उत्तमता नहीं पाई जाती। यथा ये कौन से उत्तमता नहीं पाई जा रही है, उसकी युक्ति क्या है? ज्ञान द्वारा केवल विशेष का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होने से जात्यंतर स्वरूप द्रव्य उपलब्ध होता है, और दोनों नयों के विषय को नहीं ग्रहण करने वाले ज्ञान का साकारपना नहीं बनता, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। क्या कहना चाहते हैं, यानी उसकी युक्ति जो अभी तक उसने दलीलें दी है वो ठीक नहीं है। देखो, ज्ञान द्वारा केवल विशेष का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होने से जात्यंतर स्वरूप द्रव्य उपलब्ध होता है, और दोनों नयों के विषय को नहीं ग्रहण करने वाले ज्ञान का साकारपना नहीं बनता, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है ये हे श्रेयांश जिन, ये ऊपर पढ़ेंगे 18 नंबर, विधिर्विशक्त प्रतिषेध रूप प्रमाणमत्रान्यतरत् प्रधानम् गुणोपरो मुख्य नियाम हेतुर् नयस्स दृष्टांत समर्थनस्ते। उसका अर्थ नीचे देखते हम। हे श्रेयांश जिन, आपके मत में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन स्वचतुष्टय की अपेक्षा किए जाने वाले विधान का स्वरूप परचतुष्टय की अपेक्षा होने वाले विधान का स्वरूप चाहिए, वो अलग, बीच में गैप चाहिए। फिर से पढ़ती हूँ। आपके मत में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन स्वचतुष्टय की अपेक्षा किए जाने वाले विधान का स्वरूप परचतुष्टय की अपेक्षा होने वाले प्रतिषेध से संबद्ध पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, विधि और निषेध कहते हैं ना, अस्ति और नास्ति। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब अस्ति कहेंगे, विधि कहेंगे, भाव रूप कहेंगे, तो उसके साथ परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभाव रूप प्रतिषेध, उससे वो संबंधित है ही। जैसे हमने कहा ना ये काला है, तो काला है तो सफेद नहीं, पीला नहीं, वो सब उसमें है ही, गर्भित ही है, यही कह रहे। विधि और प्रतिषेध इन दोनों में से एक प्रधान होता है, वही प्रमाण है और दूसरा गौण है। इनमें जो प्रधानता का नियामक है वही नय है, जो दृष्टांत का अर्थात धर्म विशेष का समर्थन करता है। इन नय जो होते हैं वो विशिष्ट धर्म का समर्थन करता है, परंतु वहां दूसरे गौण रूप वहां पाए जाते हैं। इस प्रकार आगम और युक्ति से दर्शन का अस्तित्व सिद्ध होने पर उसका अभाव नहीं माना जाता, क्योंकि दर्शन का व्यापार बाह्य पदार्थों को छोड़ अंतरंग वस्तु में होता है। ये दृश्य शक्ति में कहो या सर्वदर्शित्व में भी हो, आत्मदर्शनमयी ऐसा उसमें शब्द आता है। देखो क्या है, जानना या देखने का कार्य कहाँ हो है? आत्मा में होना है, तो वहां पदार्थों के ज्ञेयों को जानने रूप यहाँ जो पर्याय हो रही, ज्ञान ने उसका उस रूप विशेषों को जानने रूप, विशेषों को जानने ने उसने पदार्थों को ये जुदा जुदा पहचान लिया, तो उसमें उसको कहेंगे ज्ञान। अभी यहाँ उसके पूर्व दर्शन में क्या हो रहा है, पदार्थों को जुदा जुदा नहीं पहचाना है, सत इतना ही ग्रहण किया है, तो आत्मा और पदार्थ ऐसा भी डिफरेंस नहीं किया है, ज्ञान में वो हो जाता है। इसलिए आत्मा और पदार्थ ऐसा भी डिफरेंस नहीं है, और एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ ऐसा भी डिफरेंस नहीं है, तो उसको कहेंगे वो बहिरंग में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, बाह्य में। पहले बहुत बार ये चर्चा हुई दर्शन के ऊपर, तो कहते इसलिए उसको कहेंगे वो उसका विषय आत्मा है। ये सामान्य को ये वहां सामान्य ने डिफ्रेंशिएट किए बिना वाला सामान्य, उसी को आत्मा कहने की पद्धति है। देखो यहां यह नहीं कह सकते, तीसरी लाइन, कि केवल ज्ञान ही दो शक्तियों से संयुक्त होने के कारण बहिरंग और अंतरंग दोनों वस्तुओं का परिच्छेदक है, क्योंकि ज्ञान स्वयं एक पर्याय है और पर्याय में दूसरी पर्याय होती नहीं। यदि पर्याय में भी और पर्याय मानी जाए तो अवस्थान का कोई कारण न होने से अनवस्था दोष उत्पन्न होता है, यानी सब केओस हो जाएगा। इसलिए अंतरंग उपयोग से बहिरंग उपयोग को पृथक व्युत ही होना चाहिए। दर्शन को यहाँ अंतरंग उपयोग कह दिया उन्होंने, अन्यथा सर्वज्ञत्व की उपपत्ति नहीं बनती। अतएव आत्मा को अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग ऐसी दो शक्तियों से युक्त मानना अभीष्ट सिद्ध होता है। ऐसा मानने पर अभी 19 में ये दर्शन की परिभाषा बता रहे, जमसामन्न गहनम भावानम नेव कट आयारम अविशेषे सिदूनते दंसन मिदि भन्नते समये अविशेष सिदूनते। वस्तुओं का आकार न करके, वस्तुओं का आकार जिसको हम ज्ञाकार कहेंगे उसी को ज्ञानाकार भी कहेंगे, है वो पदार्थों में विशेषता न करके, ये समय ये यहाँ पर बात आई ना, पदार्थों में डिफरेंशिएट किए बिना। तो जब वो वस्तुओं के आकार होते हैं ना, उसका अर्थ होता है ज्ञाकार ज्ञानाकार उसी का नाम होता है, यानी जानने में आत्मा में उनके जानने रूप वो पर्याय हो गए। वस्तुओं के आकार झलके कहो, ज्ञान ने उनको जाना कहो, ज्ञानाकार हुआ कहो या ज्ञाकार हुआ कहो, बात एक ही है। तो वस्तुओं का आकार न करके, वो पदार्थों में विशेषता न करके, विशेषता न करके ने वो डिफरेंशिएट नहीं किया और ना ही उसके कोई आकार झलके, जो सामान्य का ग्रहण किया जाता है उसे ही शास्त्र में दर्शन कहा गया। अभी कोई आकार ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, बस बस है, बस इतना ही। इस सूत्र से प्रस्तुत व्याख्यान विरुद्ध भी नहीं पड़ता, क्योंकि उक्त सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग आत्म पदार्थ के अर्थ में किया गया है। इसी के विशेष प्रतिपादन के लिए देखो षटखंडागम जीवस्थान सत प्ररूपणा भाग एक पृष्ठ 147 आदि। इन ज्ञान वहां दर्शन की चर्चा है विशेष रूप से। जीव का सामान्यपना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि नियम के बिना ज्ञान के विषयभूत किए गए त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्यायों से संचित बहिरंग और अंतरंग पदार्थों का जीव में सामान्यपना मानने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहते हैं, ज्ञान के विषयभूत क्या है, त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्यायों से संचित कौन कौन है, बहिरंग और अंतरंग पदार्थ, वो सबका जीवन में जीव में सामान्यपना मानने में, सबको जीव में सामान्य कह दिया। जब जीव को सामान्य, जीव का ग्रहण हुआ, सामान्य का ग्रहण हुआ, उसमें सारे पदार्थ आ गए, ये उसका अर्थ होता है। ये दर्शन की चर्चा होती है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है बहुत बार, परंतु दर्शन का विषय भी स्व पर है। आत्मा कहने से वो आत्मा को ही जानता है, पर को ये नहीं लेना है उसमें, वो अनाकार रूप है और ज्ञान है वो साकार है। शंका, इस प्रकार सामान्य से दर्शन की सिद्धि और केवल दर्शन की सिद्धि भले हो जाए, किंतु उससे शेष दर्शनों की सिद्धि नहीं होती। क्या अभी फिर भी कहाँ अटका है? वो बस दर्शन है और केवल दर्शन है कह दो, क्योंकि सबको वहाँ सामान्य से हो गया, आत्मा को ग्रहण किया। तो कहते उसके जो विशेष बताए ना, ये चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन ये कैसे हो सकता है, ये उनका कहना है। उसके लिए स्वयं उसके प्रूफ दे रहे हैं। क्योंकि कहा ना, शंकाकार ने कहा क्योंकि, क्योंकि कहकर बाह्य पदार्थों के विषय करने वाले को दर्शन का है ऐसा भी कहेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है, देखो उसके लिए उसने भी आगम के प्रूफ दिए हैं, क्योंकि दर्शन की जो परिभाषा है चक्षु चक्षु दर्शन की, 20 को पढ़ेंगे ऊपर। चक्षुण जम पयासदी दिशदी तम दक्षुदंसनम वेन्ती दिठस्यजम शरणम नायवम तम अचक्षुती। जो चक्षु इंद्रियों का आलंबन लेकर प्रकाशित होता है या दिखता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और जो अन्य इंद्रियों से दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। ये मूल गाथा है, आगम की बात है। और फिर 21 नंबर पर भी एक और प्रूफ दे रहे हैं। परमाणु आदि आयिम अंतिम खंडम तिमुत्ति दौवाईम तम ओहि दंसनम पुनः जम्पस्सदितानि पच्छक्खम। परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध तक जितने मूर्तिक द्रव्य है उन्हें जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधि दर्शन है। क्योंकि तीन भेद बताए ना, अवधि दर्शन का विषय क्या बताया, परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध है वो महास्कंध, यानी कोई परमाणु कोई पुद्गल नहीं छोड़ा, क्योंकि इसकी कोई पर्याय नहीं छूटी। ये ध्रुवधाम में एक वो रितेश क्या नाम है जैन क्या कुछ, उसका एक लेख आया था, महास्कंद अवधि ज्ञान का विषय नहीं होता, ऐसा कुछ लिखा था उसने। मैंने प्रवीण को पूछा था वहां पर, इसका क्या प्रूफ है, ऐसा कैसा लिख दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं तीन बार मैंने फोन किया उसको। देखो परमाणु से लेकर महास्कंद तक, परमाणु तक तो होता ही है ना, तो महास्कंद तो सबसे बड़ा स्कंद है। ये 21 नंबर यहाँ लिया है, गाथा 21। इन सूत्र वचनों में, ये तो शंकाकार ने मूल आगम की बातें प्रस्तुत की है। तो कहते इन सूत्र वचनों में बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला दर्शन कहा गया है, और आप कहते आत्मा को विषय करने वाला वो दर्शन है, ऐसे उसकी शंका है। समाधान, नहीं, क्योंकि तुमने इन गाथाओं का परमार्थ रूप अर्थ नहीं समझा। शंकाकार पूछते 101 पेज पर, वह परमार्थ रूप अर्थ क्या है? समाधान, कहते हैं चक्षुओं के आलंबन से जो प्रकाशित होता है अर्थात दिखता है अथवा आंख द्वारा देखा जाता है वह चक्षु दर्शन है। इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि चक्षु इंद्रिय ज्ञान से जो पूर्व ही चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है वह चक्षु दर्शन है। यानी चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पूर्व में वह स्वशक्ति रूप सामान्य। शंकाकार पूछते हैं उस चक्षु इंद्रिय के विषय से प्रतिबद्ध अंतरंग शक्ति में चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? नहीं, क्योंकि बालक जनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षुओं को जो दिखता है वही चक्षु दर्शन है, ऐसा प्ररूपण किया गया है। शंका ये कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय के विषय से प्रतिबद्ध और अंतरंग शक्ति है, वो शक्ति तो अंतरंग है, तो उसको चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है या चक्षु के द्वारा होता है, उसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? अंतरंग शक्ति तो अंतरंग आत्मा कोई विषय करने वाला है, तो उसमें ये चक्षु अचक्षु अवधि ये भेद कैसे हो सकते हैं? ये उनका प्रश्न है। तो शंकाकार पूछते, गाथा का गला न घोट कर उस तो गाथा का अर्थ क्यों नहीं लेते? क्या हुआ ना, शंका और समाधान दोनों हुआ। उनको शंका नहीं समझ में आई थी, इसलिए फिर दोबारा किए थे। जरा उसमें बोलो।
कभी आत्मानुभूति होती है, कभी ज्ञान में आत्मानुभूति का ज्ञान होता है, तभी वहाँ पे दर्शन कौन सा होता है?
उसके पहले श्रुत ज्ञान था ना,
तो बीच में दर्शन नहीं,
बीच में दर्शन उपयोग लेंगे, अनाकार उपयोग ले लेंगे बीच में, तो विशुद्धि कम हो जाएगी कि नहीं जाएगी?
हाँ।
हमने देखा था महाबंध में बहुत बार आई थी।
हाँ।
ज्ञानाकार से भ्रष्ट हो जाता है, तो उसके पूर्व में वो तो जो मति श्रुत ज्ञान, हाँ, उसके पूर्व में जो ज्ञान चल रहा था, उसके बाद वो उपयोग में ले लिया उसने आत्मा को। आत्मा को यानी वो डायरेक्ट कुछ प्रदेशों को तो देखेगा नहीं वहां पर। यानी उसमें श्रुत ज्ञान के द्वारा उसका निर्णय तक पहुंचा है, तो वहां दर्शनोपयोग ऐसे कहते हैं, दर्शनोपयोग पूर्व ज्ञानोपयोग होता है, परंतु वो तो पूर्व अवस्था में लेना, जिस अनुभव का जो समय है उसमें। तो बीच में दर्शनोपयोग अगर अनाकार लेते हैं, क्योंकि हमने प्रथम उपशम समय तो में पढ़ा था, लब्धिसार का वाक्य है, उसमें साकार ज्ञानोपयोग में ही होता है, दर्शनोपयोग बाद में भजितव्य है औपशमिक के काल में, के भूल गए। गाथा के उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है।
ज्ञान चालू है, उसके पहले जो दर्शन उपयोग होगा,
अब जब होगा तो होगा, उसकी कहाँ यहाँ बात है। आत्मा का अनुभव किसमें, विशुद्धि की इतनी बढ़ना और आत्मा का अनुभव हुआ, ये ज्ञान का कार्य है, ज्ञान में हो रहा है। ये लब्धिसार में बताया था ना, जागृत अवस्था में होता है, साकार उपयोग में होता है, मूल गाथा में बात बताई, कितनी स्पष्ट बताई है, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब देखो, गाथा के उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है, जो देखा गया अर्थात जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जाना गया है, ये तो उसका जो शरण अर्थात ज्ञान होता है, उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। चक्षु इंद्रिय को छोड़ शेष इंद्रिय ज्ञानों की उत्पत्ति से पूर्व ही अपने विषय में प्रतिबद्ध स्वशक्ति का, देखो अपने विषय में प्रतिबद्ध स्वशक्ति ऐसा ली है, अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्तभूत जो सामान्य से संवेद या अनुभव होता है वह अचक्षु दर्शन है, ऐसा कहा गया है। यानी वो अपने अपने विषय के प्रति संबद्ध है, ऐसी वो स्वशक्ति ली। द्वितीय गाथा का अर्थ इस प्रकार है, जो परमाणु से लेकर महास्कंध की बात आई थी ना, उदी दर्शन का विषय, कि परमाणु से लगाकर अंतिम स्कंध पर्यंत जितने मूर्तिक द्रव्य है, उन्हें जिसके द्वारा साक्षात देखता है या जानता है वह अवधि दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। कहते हैं कि परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध पर्यंत जो पुद्गल द्रव्य स्थित है, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्व ही, क्योंकि अवधि ज्ञान ये तो क्षोभम ज्ञान है, तो उसके पहले पूर्व में होगा, जो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्तभूत स्वशक्ति विषयक उपयोग होता है। यहाँ कहा अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्तभूत स्वशक्ति विषयक उपयोग, वही अवधि दर्शन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा ज्ञान और दर्शन में कोई भेद नहीं रहता। यानी ये हमेशा ही ज्ञान दर्शन का विषय आता है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, क्योंकि वो दर्शन तो अपने पकड़ में नहीं आता है ना, इसलिए प्रश्न उठते हैं। यहाँ दर्शन यानी ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, वो सम्यक दर्शन वाला नहीं। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, ये श्रद्धा गुण के भेद है जो मिथ्या पर्याय है। और यहाँ जो दर्शन कह रहे हैं ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला दर्शन, यहाँ लेना उसमें वो सम्यक दर्शन वाली बात नहीं लेना। ये दर्शन उपयोग में सम्यक मिथ्या कुछ नहीं होता, सम्यक मिथ्यात्व का आरोप उपचार भी ज्ञान में हो जाता है। ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान कहते हैं, ऐसे इस दर्शन को नहीं कहेंगे। हाँ क्या हाँ फिर से पूछो, फिर से पूछो। पहले उन्होंने जो गाथा बताई ना, प्रत्यक्ष देखता है वो अवधि दर्शन है। अब यहाँ जो साक्षात देखता है पश्चदी, नहीं 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 ऊपर ऊपर पढ़ो प्राकृत में, परमाणु आदि आयम परमाणवा परम अणवादिकानी अंतिम खंडम ती आ पश्चिम स्कंदादिति मुक्ति दौवायुम मूर्ति द्रव्याणी। अच्छा यहाँ बीच में संस्कृत आया है, जम जस्मात पश्यति यानी पश्यति, यहाँ तक उन्होंने इन्वर्टेड किया है, नहीं एक आंकड़ा दिया पश्यति इति पाठो नास्ति, जम यस्मात जानीते तानि पच्चक्खम साक्षात तम तत् ओहि दंशनम अवधि दर्शनमिति दर्शन। अच्छा यहाँ ये कहना चाहते हैं, अभी मैं बोलती हूँ, पहले चक्षु अचक्षु की बात क्या बताई थी उन्होंने, देखो पूर्व पूर्व पेज 101 पेज पर यानी वो जो चक्षु इंद्रिय ज्ञान के पूर्व होता है वो उसके उत्पत्ति में निमित्त भूत है, चक्षु दर्शन कहेंगे। और अन्य इंद्रियों के द्वारा जो है ना, देखो नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं पेज नंबर 101 पर, जो देखा गया है अर्थात जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जाना गया है उसका जो शरण अर्थात ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। यानी वो अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त भूत है। अब यहाँ ये कह रहे हैं, अब ये प्राकृत में देखो, ये उसमें संस्कृत प्राकृत दोनों है, परमाणु आदि आयम उसका अर्थ होता है परमाणु आदि कानी, अंतिम खंडम ती आ पश्चिम स्कंदादिति यानी परमाणु से लेकर पश्चिम स्कंद यानी महास्कंद तक, मुक्ति दौवायुम यानी मूर्ति द्रव्याणी जो मूर्ति द्रव्य है, जम यस्मात पश्यति जिसके द्वारा साक्षात देखता है। इसके लिए फुटनोट में है पश्यति पाठी नहीं है वहां पर, यस्मात पश्यति उन्हें से जानीते ऐसा लिया तानी पच्छक्कम यानी साक्षात तम तत् ओहि दंशनम। यानी यहां जिसके द्वारा वो जानता है वो अवधि दर्शन है, यानी परमाणु से लेकर महास्कंद तक जानता है, जिसके द्वारा जानता है, किसके द्वारा जानते थे पहले अवधि दर्शन के द्वारा अवधि ज्ञान करते, इस तरह से ये उनका अर्थ लेना चाहते हैं। यानी उसके पूर्व में होता है इसलिए उसके द्वारा वो उसको जानता है, ऐसा लिया
जानता है, मैं ज्ञान ले
लेगा। हाँ, तो पश्यति किसी मूल प्रति में पश्यति शब्द ही नहीं है, यस्मात् जानिते तानि पच्छक्कम, पच्छक्कम ने साक्षात तम तत् ओहि दंशनम अवधि दर्शनम इति दृश्यम। अभी आगे का वाक्य देखते हैं। देखता है या जानता है, उन्होंने लिखा ना, ये या शब्द ऊपर नहीं है, उन्होंने ऐसे उनको कहना कि ये अवधि दर्शन के पश्चात वो अवधि ज्ञान से जानता है, वो अवधि ज्ञान के पूर्व में उसका पूर्व पर्याय रूप है उसको। यहाँ लिखा है ना, ऐसा जानना चाहिए परमाणु से लेकर, ये तो इन्वर्टेड में पूरी परिभाषा डाली, अब उसको समझाते हैं यहाँ पर, परमाणु से लेकर, और वो स्वयं नहीं बताए ऊपर ही लिखा है परमाणु आदिम कादुना, अंतिम स्कंद पर्यंत जो पुद्गल द्रव्य स्थित है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्व ही, प्रत्यक्ष ज्ञान क्योंकि अवधि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो पूर्व ही जो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्तभूत स्वशक्ति विषयक उपयोग रहता है, यानी वो ज्ञान के निमित्तभूत उसके वो स्वशक्ति रूप उपयोग हमेशा लिया, अपने को पकड़ने वाला, उसको अवधि दर्शन कह दिया। अब फिर शंका, केवल ज्ञान से केवल दर्शन समान किस प्रकार है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि मेय प्रमाण केवल ज्ञान के भेद से भिन्न आत्मविषयक उपयोग को भी तत्प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं आता। प्रश्न क्या है, जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अभिभाग प्रतिच्छेद समान है तो ये आत्मा का विषय करते और वो पदार्थों को, तो वो समान कैसे हो सकते, ये इसकी शंका है। तो उसका उत्तर में बताया है, केवल ज्ञान कितना है तो मेय प्रमाण याद है भाव अपेक्षा सर्वगत कहते हैं, ज्ञान कितना है गेय प्रमाण, गेय कितना है लोकालोक, इसलिए केवल ज्ञान कितना है तो लोकालोक प्रमाण, ऐसा प्रवचन सार में गाथा है। तो यहाँ वही कहते हैं मेय प्रमाण केवल ज्ञान उसके भेद से भिन्न आत्मविषयक उपयोग को भी तत्प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं आता, यानी वो आत्मविषयक उपयोग भी उतने ही को विषय करता, यही उसका अर्थ होता है। मेय यानी प्रमेय, वहाँ प्रमेय लिखा है, प्रमेय लिखने की जरूरत नहीं थी, नेय प्रमाण लिखा है ना ऊपर, कहाँ ऐड किया था, मेय प्रमाण ही लिखा है, मेय का अर्थ प्रमेय ही होता है, परंतु प्र ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर है ना नेय प्रमाण, हमने तो नहीं ऐड किया था, आपके उसमें कैसे हो गया, यानी उसका अर्थ क्या है तो मेय यानी प्रमेय गेय। अब ये सारे प्रश्न हुए किस पर, प्रश्न पूछा था चक्षुदर्शन या अचक्षुदर्शन या अवधि दर्शन कैसे होते हैं, उस पर ये लंबी चर्चा चली। अब वो उसका उत्तर तो अब बता रहे, खवो समियाए लब्धिये, क्षायोपशमिक उम्मी बराबर करना, लब्धि से जीव चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी और अवधि दर्शनी होता है। अब शंकाकार पूछते हैं, चक्षुदर्शनावरण के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने के कारण उदय में आए हुए देशघाती स्पर्धकों के क्षावश्रमिकपना कैसे हुआ, क्योंकि सोक्ष्म किसको कहेंगे, देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो उसको क्षौक्षमिकपना कैसे घटित होता है उसका समाधान कहते हैं, उदय में पतन के समय में पूरा वाक्य पढ़ती उसका अर्थ बताएंगे। सर्वघाती स्पर्धकों का जो अनंत गुण हीन पना हो जाता है वही उनका क्षय है, और देशघाती स्पर्धकों का स्वरूप से जो अवस्थान है वही उपशम है। क्षय और उपशम रूप इन दो गुणों से युक्त चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के स्कंधों के उदय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम का नाम क्षौक्षमिक लब्धि है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए।
देशघाती स्पर्धकों का स्वरूप से जो अवस्था है वही उपशम।
यहाँ क्या कहते हैं, उदय में पतन का समय, निषेक तो रचना मालूम है, और सबसे नीचे का जो निषेक है वो उदय रूप होता है। अब दूसरे निषेक में से जब उदय रूप निषेक हुआ उसका कहेंगे वो उदय में पतन के समय, क्या होता है वो सर्वघाती तो सर्वत्र पड़े थे, उदय होते होते एक ही समय में वो अनंत गुण हीन हो जाता है, तो देशघाती रूप से उदय में आता है, उसको तो उसका सर्वघाती का क्षय कह दिया। अब वो हाँ उदय में आना, ऊपर तो दूसरे तीसरे निषेक में तो अपने रूप से पड़े हैं। उसको उपशम क्यों कहा ये प्रश्न है, क्योंकि देशघाती अपने रूप से ही रहे। नहीं नहीं, उदय भाविक क्षय हो गया उनका क्षय, उसी को उक्षय कहते, उसी को उदय भाविक क्षय कहते। नहीं नहीं, उन्होंने ये इसको सरुवेण जब अवट्ठानम तम उसको नाम दिया है, देशघाती अपने रूप से रहे, उनका अनंत गुणाहीन वगैरह नहीं हुआ, उसी को उपशम का उपशम। वो उपशमिक सम्यक वाली, वो उपशम वाली बात मत लेना। वो तो सर्वघाती ऊपर जो पड़े वो अपने रूप से पड़े हैं। हाँ हाँ, वहाँ उनको अनुदय रूप उपशम ऐसा अलग नाम देते हैं, वो जो पहले जो आए सत्वोपशम या अनुदयोपशम वो अलग बात की थी, ये उदय में आने को अपने रूप रहने को उन्होंने उपशम कह दिया। देखो ये इसका क्या अर्थ है, देखो उदय में पतन के समय, अभी उदय में पतन के समय सर्वघाती और देशघाती का क्या हो रहा है उसकी बात है। उदय में पतन होते समय सर्वघाती वो देशघाती रूप से हो रहे हैं और देशघाती अपने रूप से ही हो रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। उदय के पतन के समय की अवस्था की बात हो रही है। हाँ, इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ, यानी उदय के पतन के समय देशघाती में कोई स्थित्यंतर नहीं हो रहा है, वो तो है वैसा ही रह रहा है, और सर्वघाती वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है। और क्षय और उपशम रूप इन दो गुणों से संयुक्त चक्षु दर्शनावरणीय कर्म स्कंध के उदय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम का नाम क्षौक्षमिक लब्धि, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अचक्षु दर्शनावरणीय देशघाती स्पर्धकों के उदय से अचक्षु दर्शन होता है, ऐसा समझकर क्षायोपशमिक लब्धि से चक्षु दर्शन होता है, ऐसा कहा गया है। अचक्षु दर्शन होता है ऐसा कहा गया है। अवधि दर्शनावरणीय के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न हुई लब्धि से अवधि दर्शन होता है, इसलिए क्षायोपशमिक लब्धि से अवधि दर्शन कहा गया है। अब आगे का प्रश्न। केवल दंशनी नाम कदम भवदी जीव केवल दर्शन ही किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। तो खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव केवल दर्शनी होता है। दर्शनावरणीय कर्म का निर्मूल विनाश क्षय है, यहाँ उसको क्षय कहा। वो सर्वघाती के उदय का क्षय तो वो बात अलग थी, यहाँ निर्मूल कह दिया, पूरा सत्ता में से नाश। उस क्षय से, वो ऐसे लिखा क्षय बराबर करो, उस क्षय से उत्पन्न जीव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते हैं। देखो क्षय तो कर्मों में हुआ है, जीव में क्या हुआ? तो जीव में जो परिणाम हुआ उसका नाम है क्षायिक लब्धि। उसे केवल दर्शनी, उससे केवल दर्शनी होता है, यहाँ यह उपयोगी गाथा है 22 नंबर वाली। एवं सुत्तप सिद्धम भणंति जय केवलम रणस्थिति मिच्छा दिठी अन्नो को तत्तो एत्थ जियलोए। यानी ऐसा जो सूत्र प्रसिद्ध है उसका अर्थ आगे देखते हैं, नहीं नीचे लिखा है। इस प्रकार सूत्र द्वारा प्रसिद्ध होते हुए भी, सुत्त प्रसिद्धम है ना, जे भणंती केवलम न चथी, जो कहते कि केवल दर्शन नहीं है, उनसे बड़ा इस जीव लोक में कौन मिथ्यात्व होगा, यानी वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है जो केवल दर्शन को ही नहीं मान रहा है वो। देखो सूत्र कैसा लिखा, एवं सूत्र प्रसिद्धम, केवल दर्शन है ये तो सूत्र प्रसिद्ध है। कौन सा? क्योंकि सूत्र में पूछा ना केवल दर्शन ही कैसे होता है, तो क्षायिक लब्धि से केवल दर्शन ही होता है, तो केवल दर्शन का अस्तित्व सूत्र से सिद्ध हो रहा है। और वो कहता है कि केवल दर्शन कुछ होता ही नहीं है, तो इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि और कौन सा होगा, क्योंकि जो सूत्र को नहीं मान रहा है, सूत्र से विरुद्ध मान रहा है। अब ये दर्शन मार्गना हो गई, अब लेशा मार्गना की बात करेंगे। देखो लेशाओं की अपेक्षा कितने भेद है, लेशा मार्गना की अपेक्षा 6 भेद, और वो अलेशा वाला भी होगा है ना, लेशा से रहित जीव भी हो गए कि नहीं हो ले? देखो ज्ञान दर्शन में ऐसा, ज्ञान दर्शन से रहित कोई जीव नहीं है। वेद में वेद वाले भी लिए, अपगत वेदी भी लिए, योग में योग वाले भी, अयोग भी लिए, कषाय में कषाय वाले भी लिए, अकषाय भी लिए। वैसे ज्ञान दर्शन में ज्ञान वाले और अज्ञान वाले लिए कि नहीं लिए? ज्ञान से रहित कोई जीव होता है? हाँ नहीं होता, तो हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ दर्शन से रहित कोई होता है? तो कोई नहीं होता, परंतु यहाँ लेशा से रहित हो गए, क्योंकि सहयोगी केवली तक लेशा है अयोगी वाले को, क्योंकि योग और कषाय मिलकर ही लेशा कहलाते हैं। लेशा की परिभाषा क्या है? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। अब यहाँ कहते हैं लेसाणुवादेन किन्न लेस्यो नील लेस्यो काउ लेस्यो तेऊ लेस्यो पम्म लेस्यो सुक्क लेस्यो नाम कदम भवदी। तो कहते लेशा मार्गनानुसार जीव कृष्ण लेशा नील लेशा कापोत लेशा तेजो लेशा पद्म लेशा और शुक्ल लेशा वाला किस कारण से होता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा लो। यहाँ पहले के समान निक्षेपों का आश्रय लेकर चालना करना चाहिए, यहाँ नो आगम भाव लेशा का अधिकार है, क्योंकि वो आगम यानी वो उस संबंधित आगम को जानने वाला उपयोग नहीं वगैरह वगैरह लगाते हैं। भाव लेशा में उस रूप परिणत जीव लेना है तो ये नो आगम लिया, क्योंकि आगम भाव में तो उस आगम को जानने वाला उसमें उपयुक्त जीव लेना है, इसलिए ये सब जो लेशाएं है भाव आगम भाव तो बताना, क्योंकि उस रूप परिणत है जीव, तो उस परिणाम रूप परिणत ऐसा जो जीव है उसको यहाँ नो आगम भाव लेशा कहा। अब उसका उत्तर, पहले पूछा था कैसे होता है जी, औदयी है ना भावेण, औदयिक भाव से। ये हर जगह औदायिक क्यों लेते हैं, लिखते औदयिक होना चाहिए। औदयिक भाव से जीव कृष्ण आदि लेशा वाला होता है, क्योंकि औदयिक भावों में इनको गिने ना, छह लेशा जुदी जी गिनी है, कषाय संबंधी अनुभाग करो उसको, अनुयाय हुआ है। देखो अभी क्यों औदय क्यों कहते हैं उसकी बात बताएंगे। कषाय संबंधी अनुभाग जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत स्थापित, क्या कहना चाहते हैं? जो एक एक कषाय है, जैसे हमने देखे थे घाती कर्म जो है उसमें स्पर्धक कैसे स्थापित करते हैं, जघन्य से उत्कृष्ट तक अनंत स्पर्धक होते हैं, और फिर उसमें हम लता दारू अस्थि और शैल वगैरह वगैरह उसमें विभाजित कर देते हैं। यहाँ सामान्य से कषाय कहने से उसके जघन्य स्पर्धक से लेकर तीव्र अनुभाग जो मैक्सिमम है वहां तक के स्पर्धक हम एक लाइन में लिखेंगे, नीचे से ऊपर तक। तो कहते हैं कषाय संबंधी अनुभाग जघन्य स्पर्धक से लेकर यानी अत्यंत मंद से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत स्थापित, छह भागों में विभक्त, और उसमें हम छह भाग करेंगे। उदय में आए हुए स्पर्धकों का प्रथम भाग मंदतम होता है, यानी जब उसमें से वो नीचे के अत्यंत मंद रूप कषायों का उदय चलता है उस समय उसको हम शुक्ल लेशा वाला कहेंगे, और उसके उदय से उत्पन्न कषाय शुक्ल लेशा है। दूसरा भाग मंदतर कषाय अनुभाग है, मंद हाँ मंदतर कैसा हुआ इसको मंद, हाँ मंदतम पहले लिया था, सॉरी मंदतम, ये मैक्सिमम मंद था, अभी मंदतर, उससे मंदता कम हुई है, समझ में आता है मंदतरतम क्या होता है। उसके उदय से उत्पन्न कषाय पद्मलेशा है। तृतीय भाग मंद कषाय अनुभाग का है, और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय तेजोलेशा है। ये समझ में है, मंदतम शुक्ल है, मंदतर पद्म है, मंद पीत, हाँ तेजोलेशा जिसको कहेंगे। चतुर्थ भाग तीव्र कषाय अनुभाग का है, जिसको तीव्र कषाय कह दिया, उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय कापोतलेशा है। पांचवा भाग तीव्रतर कषाय अनुभाग का है, और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय नीललेशा है। छठवां भाग तीव्रतम कषाय अनुभाग का है, और उससे, ये बीच में है एक्स्ट्रा हो गया, उससे उत्पन्न कषाय कषायक ने कषाय कृष्ण लेशा है। चूंकि ये छह ही लेशाएं कषायों के उदय से होती, इसलिए वे औदयिक है। केवली भगवान को शुक्ल लेशा पूछेंगे, शंकाकार पूछते हैं यदि कषायों के उदय से लेशाएं कही जाती है तो बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाय जीवों के लेशा के अभाव का प्रसंग आता है। ग्यारहवें बारहवें तेरहवें तीनों को बताएं, और ये सारे कषाय रही जीव है। समाधान, सचमुच ही क्षीण कषाय जीवों में लेशा के अभाव का प्रसंग आता यदि केवल कषायोदय से ही लेशा की उत्पत्ति मानी जाती है। एक कषाय का उदय तो है, परंतु मात्र कषाय का उदय नहीं लेना। किंतु शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी लेशा है, यह स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह भी कर्म के बंध में निमित्त होता है। लेशा का अर्थ क्या है? जो लिंपती थी लेशा, जो जीव को कर्मों से लिप्त करती है वो लेशा। तो कषाय के मिट जाने पर भी योगों के कारण कर्म बनते हैं, इसलिए उसको भी लेशा कहेंगे। इसलिए कहते वह भी कर्म के बंध में निमित्त है। इस कारण कषाय के नष्ट हो जाने पर भी चूंकि योग रहता है, इसलिए क्षीण कषाय जीवों को लेशा सहित मानने में कोई विरोध नहीं आता। समझ में ये प्रश्न और उत्तर? शंकाकार पूछते हैं अभी, यदि बंध के कारणों को लेशारूप कहा जाता है तो प्रमाद को भी लेशारूप क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? उसका समाधान, नहीं क्योंकि प्रमाद का कषायों में अंतर्भाव हो जाता है। अब फिर पूछते हैं, फिर असंयम को भी लेशाभाव क्यों नहीं कह मानते? क्योंकि बंध के कारण क्या है? मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग। प्रमाद को कषाय में गर्भित कर दिया। देखते असंयम को लेशाभाव क्यों नहीं मानते हैं? समाधान, नहीं क्योंकि असंयम का भी लेशा कर्म में अंतर्भाव हो जाता है। फिर शंका, मिथ्यात्व को लेशारूप क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि असंयम में भी उन कर्मों का उदय तो वहां पर है ही है। अब मिथ्यात्व रह गया, मिथ्यात्व को भी ले लिया। समाधान, मिथ्यात्व की लेशा संज्ञा होवे क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं आता, किंतु यहाँ कषायों का ही प्राधान्य है क्योंकि कषाय ही हिंसा आदि रूप लेशा कर्म के कारण है और अन्य बंध कारणों में उनका अभाव है। अब कहते अलेश्यो नाम कदम भवदि, जीव अलेशिक कैसे होता है? यहाँ भी निक्षेप के आश्रय से प्ररूपना करनी चाहिए। वह अलेक्षिक पर नाम स्थापना निक्षेप लगाना, उसका उत्तर 106 पृष्ठ पर, खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है। लेशा के कारणभूत कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते हैं। उसी क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है, यह सूत्र का तात्पर्य है। अब इसमें कहेंगे वो तो शरीर नाम कर्म का क्षय कहाँ हुआ है अयोगी के? अभी ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना? तो शरीर नाम कर्म की सत्ता का होना क्षायिकत्व के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्षायिक भाव शरीर नाम कर्म के अधीन नहीं है। नहीं, शरीर नाम कर्म के कारण उसको कथनचित औदयिक वो योग में माना है, परंतु वो सत्ता में है ना, उदय में नहीं आए। अयोगी केवली में उसका उदय मिट गया और वो क्षय होने वाला ही है। फिर दोबारा अभी उसको तो रिटर्न भी नहीं है उसका कुछ। अयोगी के द्विचरम समय में उसका क्षय होगा, सत्ता में है पर नहीं के बराबर है, इसलिए वहां उसको क्षायिक भाव कह दिया। हाँ, अभी इसके बाद भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा में भव्य और अभव्य दो ही भेद हो गए, और फिर भव्य अभव्य से रहित वो सिद्ध भगवान कहलाएंगे। भव्याणु वादेन भव सिद्धियो अभव सिद्धियो नाम कदम भवदी, भव्य मार्गणानुसार जीव भव्य सिद्धि को अभव्य सिद्धि किस कारण से होते हैं, यह सूत्र सुगम है। अभी तक अलग अलग भावों की चर्चा की ना, क्षायिक श्रमिक भाव से होते हैं, क्षायिक लब्धि से होते हैं, औदयिक भाव है वगैरह वगैरह। अब यहाँ कह रहे पारिणामी एण भावेण, पारिणामिक भाव से जीव भव्य सिद्धि या अभव्य सिद्धि होता है, यानी वो पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के कारण नहीं है, वो जीव का ही ऐसा ही सहज योग्यता है, यह सूत्र भी सुगम है। पेज 106 देखो, 64 नंबर का सूत्र भी हमने पढ़ा, भव्य मार्गणानुसार जीव भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि किस कारण होता है, तो कहते पारिणामिक भाव से भव्य सिद्धि को अभव्य सिद्धि होता है, यह भी सूत्र सुगम है। 66 नंबर, नेव भव सिद्धियो नेव अभव सिद्धियो नाम कदम भवदी, ये किसकी बात है? सिद्धों की, क्योंकि भव्य ने होने योग्य अभी वो हो चुके हुँ? तो जीव न भव्य सिद्धिक न अभव्य सिद्धिक किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह करो। यह सूत्र भी सुगम है। कहते खैयाए लद्दीये, क्षायिक लब्धि से जीव न भव्य सिद्धिक न अभव्य सिद्धिक होता है, यह सूत्र सुगम है। यानी सभी आठों कर्मों का क्षय हो चुकता है ना वहां पर, तभी वो सिद्ध हुआ, तो उसको कहेंगे ना भव्य है ना अभव्य है। अब सम्यक्त्व मार्गणा के भेद, सम्यक्त्व मार्गणा के भेद मालूम है? आप बताओ ब्रह्मा आपको मालूम है? सम्यक्त्व मार्गणा है सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों के भेद, तो मूल में कोई सम्यक दृष्टि कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, ये तो दो भेद हो गए। तो मिथ्या तो सासाधन और मिश्र वाले, ये तीन हो गए। और जो सम्यक दृष्टि है वो क्षायोपशमिक है, औपशमिक है और क्षायिक, छह भेद हो गए। गोली लग गई बाय चांस। तो सम्यक्त्व मार्गणानुसार ऊपर पढ़ना रह गया, सम्मत्तानुवादेन सम्माइट्ठी नाम कदम भवदी। सम्यक्त्व क्यों होता है तो उसमें कौन कौन से भाव है वो बताएंगे। सम्यक्त्व मार्गणानुसार जीव सम्यक् दृष्टि किस कारण से होता है तो आप बताएंगे, क्या उदय भाव से होता है कि पारिणामिक से होता है? बोल, पारिणामिक सबको है, मिथ्या दृष्टि को पारिणामिक नहीं है, आप क्या कहते हैं? किसी उदय से सम्यक तो होता है क्या? तो औदयिक नहीं है, तो क्या है? कौन कौन से टाइप के सम्यक दर्शन पाए जाते हैं? औपशमिक भी है, क्षायोपशमिक भी है, क्षायिक भी है, तीनों कहेंगे ना। अभी हमने कहाँ पढ़ा है, आगे पहले पढ़ने के पहले अपने को विचार करना है। यहाँ प्रश्न वही पूछते हैं, क्या औदयिक भाव से सम्यक दृष्टि होता है, क्या औपशमिक भाव से, क्या क्षायिक भाव से, क्या क्षायोपशमिक भाव से, क्या पारिणामिक भाव से, ऐसा मन में विचार कर पूछा गया है कि किस कारण से होता है। अब उसका उत्तर अब कहेंगे। वो समय आए खैयाए खवो समय आए लब्धिये, औपशमिक क्षायिक और क्षौपशमिक लब्धि से जीव सम्यक् दृष्टि होता है। यानी किसी के वो दर्शन होने आदि अनंत अनुबंधी का उपशम होने पर, किसी के क्षय होने पर, किसी के क्षौपशम होने पर होता है, तो वो जीव की लब्धि कहलाती है, उसको क्षौपशमिक लब्धि कहेंगे, सम्यक को लब्धि। पहले हमने संयम में भी वो संयम की लब्धि देखी थी, लब्धि यानी वो जीव की पर्याय है, इसलिए लब्धि शब्द लगाते हैं। तो औपशमिक क्षायिक और क्षौपशमिक लब्धि से जीव सम्यक दृष्टि होता है। दर्शन मुनि के उपशम से उपशम सम्यक तो होता है, क्षय से क्षायिक सम्यक तो होता है और क्षौपशम से वेदक सम्यक तो होता है। इन तीनों सम्यक्त्वों का जो एकत्व है उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। भेद करके फिर अलग अलग बताएंगे, पर यहाँ इकट्ठा सम्यक दृष्टि क्यों होता है ऐसा पूछा था। क्योंकि उस सम्यक दृष्टि के ये तीन भाव होते हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि औपशमिक क्षायिक व क्षौपशमिक लब्धि से होता है ऐसा कहा गया है। शंकाकार पूछते, एक ही सम्यक दृष्टि के तीन भाव कैसे होते हैं? एक जीव के एक समय में एट ए टाइम तो नहीं होगा ना, पहले औपशमिक हुआ, बाद में क्षौपशमिक हुआ, बाद में क्षायिक हुआ, वो अलग अलग कालों में होगा, या अन्य अन्य जीव अन्य अन्य सम्यक दृष्टि पाए जाएंगे। तो उसका यही कहना है कि एक ही सम्यक दृष्टि उसके तीन भाव कैसे होते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे पृथकभूत सामान्य एक के एक साथ अनेक वर्णों के होने में कोई विरोध नहीं आता है, उसी प्रकार एक ही सम्यक दर्शन के अनेक परिणाम रूप होने में कोई विरोध नहीं आता है। कहते पृथकभूत सामान्य एक, पृथकभूत सामान्य एक जैसे अनेक वर्णों के होने में कोई विरोध नहीं। हमने कहा ना गाय यानी गौवा कौन कौन से रंग की होती है, सफेद भी होती है, काली भी होती है, वो ब्राउनिश भी होती है, पीले जैसे कलर की होती है, तो वो सब गाय कैसी होती है तो हम कहेंगे काली पीली, वैसे सफेद ऐसे होती है तो उसमें कोई विरोध तो नहीं है, एट ए टाइम तो एक ही, वही तो कह रहे हैं, सामान्य से उसको एक साथ कह दिया, पृथक भूत सामान्य उसी को कहेंगे, यानी सामान्य से कहने पर सम्य दृष्टि, और वो अलग अलग तीन भेद है पर वो जुदे जुदे है, एक साथ एक जीव को वो नहीं होते हैं। अब कहते अभी उसमें भेद को बताएंगे जुदे जुदे। खय सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी, जीव क्षायिक समय दृष्टि किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। खैयाए लब्धिये 108 पृष्ठ पर आते हैं। क्षायिक लब्धि से जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है। देखो एक क्षायिक लब्धि ने जीव में वो उत्पन्न हुआ ना भाव, क्षायिक लब्धि यानी क्षायिक समय दृष्टि कैसे होता है, तो तीर्थंकर के पादमूल में वो बातें यहाँ नहीं बताई। क्षायिक लब्धि से जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है। हाँ बाह्य में क्या क्या होता है उसकी बात वो अलग विषय है। प्रश्न ही सारे भाव में कैसे होता है, किस भाव से होता है। दर्शन मुनि कर्म के निशेष विनाश को क्षय कहते हैं। निशेष ने भी सत्ता में से निर्मूल नाश, और उस क्षय से जो जीव परिणाम उत्पन्न होता है वह क्षायिक लब्धि कहलाते हैं। उसी क्षायिक लब्धि से जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है। वेदक सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी, जीव वेदक समय दृष्टि किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह डालो यहाँ पर। यह सूत्र सुगम है। खवो सम खवो समियाए लब्धिये, क्षावशमिक लब्धि से जीव वेदक समय दृष्टि होता है। एक क्षावशमिक लब्धि यानी क्षावशम सम्यक अभी घटित करेंगे। सम्यक प्रकृति रूप देशघाती स्पर्धकों की अनंत गुणी हानि होने से उदय में आए हुए अति अल्प देशघातीपने की अपेक्षा उपशांत हुए उन यानी सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों का चूंकि क्षोभशम नाम दिया गया है इसलिए देखो उसको ही उपशांत कह दिया है। देशघाती के उदय को ही उपशांत कह दिया है उन्होंने, अलग परिभाषा है। इसलिए उस क्षोभशम से उत्पन्न जीव परिणाम को क्षोभशम लब्धि कहते हैं। उसी क्षोभशम लब्धि से वेदक सम्यक तो होता है। वेदक यानी वो सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए उसको वेदक कहते हैं। यानी सम्यक तो प्रकृति रूप जो देशघाती स्पर्धक है वो कैसे है, तो वो तो मिथ्यात्व का अनंत गुणा हानि होकर वो उदय में आए हुए हैं। यानी वो देशघाती रूप होकर उदय में आना है, उपशांत हुआ ऐसा कहें, अति तीव्र उसका जो हाँ उसका मंद हो जाना, हाँ उसको उपशांत कह दिया। नहीं नहीं होते ही नहीं सर्वघाती, हाँ परंतु उन उसमें भी देशघाती की भी तीव्र देशघाती से मंदता करके उदय में आना। हमने ऐसा देखा था, मुझे लगता है अनुभाग की अपेक्षा, जरा देखना जयधवला में या इसमें, कि सम्यक प्रकृति का जो सामान्य से शोषण सम्यक तो में उदय है वो इतना मंद नहीं होता है ना, जरा इसके बारे में देख लो ना। अनुभाग विभक्ति में कहीं मिलेगा आपको, उसका उत्कृष्ट अनुभाग हमेशा रहता है, मेरे ख्याल से बाद में वो हीन हो जाता है। शायद के काल में वो हीन हो जाता है, ऐसा मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है। उसका उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ होता है या इसमें कहाँ मिलेगा तो पता नहीं, महाबंध में, पर वो उदय में उदय की बात उसमें नहीं आएगी। देख लो, सर्वघाती मिथ्यात्व में था, समय मिथ्यात्व भी सर्वघाती था, उसमें भी अनंत गुणाहीन होकर ये देशघाती बनी है, उसमें भी वो देशघाती में भी अनंत गुणा देशघाती थी, वो तो हाँ उसमें होते ही नहीं, वो भी अल्प देशघाती करके उदय में आ रहे, ये कह रहे हैं आप, है ना, यथा योग्य अल्प होकर उदय में आ रहे, बस इतना ही लेना है उसमें। केवल दर्शन मुनि में ये होता है, अन्यत्र जो जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें सर्वघाती देशघाती दोनों होते हैं, परंतु सम्यक प्रकृति में वो नहीं घटित होता, उनमें सारे ही देशघाती ही स्पर्धक है। अब उसमें ये बता रहे, उसमें क्षोभ इसलिए घटित करते थे, जो अधिक देशघाती वो कम देशघाती होकर उदय में आ रहे, इस तरह से। अभी एक उपशम सम्यक्त की बात पढ़कर बंद करते हैं। वह सम्माइठी हुआ है, वह सम शब्द डालो बीच में, वह सम्माइठी नाम कदम भवदी, उसमें डाला है क्या? वह सम्माइठी नाम कदम भवदी जी, उपशम सम्य दृष्टि किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह। यह सूत्र सुगम है, वह समीयाय लब्धी है, औपशमिक लब्धि से जी उपशम सम्य दृष्टि होता है, क्योंकि दर्शन मुनि कर्म के उपशम से उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति देखी जाती है। अब बाकी कल पढ़ेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।